بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے آدرنیہ شروتا، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کیجیے۔ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ حجرات کی چھٹی اور ساتویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم۔
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، یدی کوئی ادھرمی کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گٹ کو انجانے میں کوئی ہانی پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشچاتاپ ہو۔ اور جان لو کہ تمہارے بیچ ایشور کے پیغمبر موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ یدی پیغمبر ان میں تمہارا کہا مان لیا کریں तो उल्टे तुम ही कठिनाई में पड़ जाओ, परंतु ईश्वर ने तुम्हें ईमान का प्रेम दिया है और उसे तुम्हारे हृदयों में सजा दिया है और कुफ्र, उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए अप्रिय बना दिया है, और ऐसे ही लोग ईश्वर के अनुग्रह और उपकार से सही मार्ग पर हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है दोस्तों, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, अक्टूबर की 22, रबीउल अव्वल, क्षमा कीजिएगा, रबीउल अव्वल की 25 और मेहर माह की 30 तारीख। कार्यक्रमों में आप पहले की तरह पहले विश्व समाचार सुनेंगे, फिर राजनीतिक चर्चा पेश की जाएगी, उसके बाद साप्ताहिक कार्यक्रम उज्जवल भविष्य पेश किया जाएगा। हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा ईरान भ्रमण। तो दोस्तों, ये थी हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, साइट पर विजिट कीजिए partstoday.com/hi। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान को हर गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार है। ईरान का इस्फहान नगर इस्लामी देशों के युवाओं की राजधानी बनने के लिए तैयार है। इमरान खान को 5 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इटली की नई प्रधानमंत्री से प्रवासियों में भय पाया जाता है। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान को हर गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार है। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन युद्ध के लिए ईरानी ड्रोनों के भेजे जाने के दावे का पुनः खंडन किया। उन्होंने कहा कि हर प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान का जवाब देने के लिए इस्लामी गणतंत्र ईरान के पास अधिकार सुरक्षित है। यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन विमानों के प्रयोग के निराधार दावे के आधार पर ईरान के विरुद्ध लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को नासिर करानी चाफी ने शनिवार को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा से ये बात कहता आया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के आधार पर देशों की संप्रभुता और अखंडता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन संकट का समाधान कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन अपनी गैर जिम्मेदाराना तथा विध्वंसक कार्रवाइयों से वातावरण को दूषित कर रहे हैं। वे ईरान विरोधी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव क्रमांक 2231 की स्वयं से व्याख्या कर रखी है, जिसके आधार पर निराधार दावे दोहराते रहते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कनानी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध का प्रस्ताव क्रमांक 2231 से कोई भी संबंध नहीं है। ईरानी युद्धपोत एक साथ 60 ड्रोन विमान उड़ान भर सकेंगे। ईरान की इस्लामी क्रांति फोर्स की नौसेना के कमांडर का कहना है कि शहीद बाकेरी युद्धपोत के डेक से एक साथ लगभग सात समझ कीजिएगा लगभग 60 ड्रोन विमान उड़ान भर सकेंगे। आईआरजीसी की नौसेना के कमांडर ने बताया कि निकट भविष्य में इस पोत के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। ये पोत हेलीकॉप्टर, मिसाइल और ड्रोन विमानों से लैस होगा। जनरल तंगसीरी का कहना था कि ड्रोन विमान इस पोत से उड़ान भर सकते हैं और फिर वापस इसके डेक पर उतर भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि आईआरजीसी की नौसेना की बड़ी जिम्मेदारी फारस खाड़ी में है, लेकिन इससे हटकर ओमान सागर में भी ईरानी सेना की नौसेना के साथ समन्वय किया जाता है। ईरान की रक्षा में आईआरजीसी की नौसेना की भूमिका के संबंध में जनरल तंगसीरी का ये कहना था कि ईरान की नौसेना जो भी कदम उठाती है अमरीकी उसके खिलाफ कदम उठाते हैं, इसलिए ईरानी नौसेना को ऐसे हथियारों से लैस होना चाहिए जिन्हें दूर से ही संचालित किया जा सके। ईरान का इस्फहान नगर इस्लामी देशों के युवाओं की राजधानी बनने के लिए तैयार है। ईरान के सांस्कृतिक और इस्लामी मार्गदर्शन मंत्री का कहना है कि इस्फहान इस्लामी देशों के युवाओं की राजधानी के रूप में मेज़बानी के लिए तैयार है। मोहम्मद मेहदी इस्माइली इस्लामी सहयोग संगठन में सूचना मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए तुर्की की यात्रा पर हैं। इस बैठक के इतर वहां उन्होंने इस्लामी सहयोग संगठन के युवा मंच के प्रमुख से मुलाकात में ईरान की सांस्कृतिक, कलात्मक और वैज्ञानिक क्षमताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ईरान और इस्लामी सहयोग संगठन के युवा मंच के बीच वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और कलात्मक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार होना चाहिए। पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त की बेंच ने इमरान खान को 5 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को 5 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इमरान खान की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है और अब वे 5 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव आयोग ने इमरान खान के विरुद्ध फौजदारी की कार्रवाई करने की भी बात कही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने तोशा खाने के उपहारों को सस्ते में खरीदकर महंगे दामों पर बेच दिया। पाकिस्तान में तोशा खाना वो विभाग है जहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा अन्य ब्यूरोक्रेट्स को मिलने वाले उपहार रखे जाते हैं। इमरान खान को अयोग्य ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान के कई नगरों में विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गए हैं। इनके समर्थकों ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किए। इमरान खान सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि उनकी पार्टी इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगी। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनको पहले ही इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उनके विरुद्ध क्या किया जाने वाला है। तालिबान का दावा है कि अमरीका उसको मान्यता देना ही नहीं चाहता। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने शनिवार को यह कहा है कि अमरीका स्वयं भी तालिबान को औपचारिकता नहीं दे रहा है और दूसरे देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहता है कि तालिबान को मान्यता दी जाए। तालिबान के प्रवक्ता का कहना था कि कुछ इस्लामी देश अपनी समस्याओं और अमरीका के डर के कारण तालिबान को मान्यता नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि हम दुनिया के सारे देशों के साथ, विशेषकर अमरीका और यूरोपीय देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों के इच्छुक हैं। तालिबान का कहना है कि अमरीका और यूरोप को अफगानिस्तान में पूंजी निवेश करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद से तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उनके अथक प्रयासों के बावजूद विश्व के देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तालिबान की अंतरिम सरकार पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगा रही हैं। विश्व समुदाय की तालिबान से मांग है कि वह अफगानिस्तान में एक समग्र सरकार का गठन करे, अपने नागरिकों का सम्मान करे और पूरे देश में महिलाओं की पढ़ाई को आजाद करे। کابل میں شیعہ چھاتروں کو نشانہ بنانے والے داعش کے آتنکوادی کو ڈھیر کر دیا گیا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ کابل استھت کاج کالج پر آتنکوادی حملے میں شامل داعش کے آتنکوادیوں کے ایک ٹھکانے کو نشٹ کر دیا گیا ہے۔ کابل کے پشچم میں شیعہ باہل علاقے میں استھت کالج پر پچھلے مہینے ایک بڑا آتنکوادی حملہ ہوا تھا، جس میں درجنوں چھاتراؤں کی موت ہو گئی تھی۔ شنیوار کو طالبان کے پروکتا نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ پچھلی رات پوروی کابل میں داعش کے ٹھکانے پر چھاپے میں دو آتنکوادیوں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ چھ آتنکوادی مار گرائے گئے۔ طالبان پروکتا کا کہنا تھا کہ طالبان بلوں کے اس چھاپے میں داعش کے ہتھیاروں کے ایک بڑے بھنڈار کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ اٹلی کی نئی پردھان منتری سے پرواسیوں میں بھے ویاپت ہو گیا ہے۔ راشٹروادی نیتا جارجیا میلونی اٹلی کی پردھان منتری کا پد گرہن کر چکی ہیں۔ جارجیا میلونی کے پردھان منتری بننے سے اٹلی میں رہنے والے پرواسیوں کے اترکت ان سے یورپ میں بھی ڈر چھایا ہوا ہے۔ دوتیہ وشو یدھ کے بعد یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ جب اٹلی میں رائٹ ونگ کا کوئی نیتا پردھان منتری کا پد سنبھالنے رہا ہے۔ ان کی پارٹی اٹلی کے تاناشاہ موسولینی کی سمرتھک ہے۔ میلونی جس دل کا نیتتو کرتی ہیں وہ پرواسیوں کے اٹلی پرویش کا ویروت کرتے ہوئے اس دیش کی سیماؤں کو سیل کرنے کا بھی پکشدھر ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اٹلی میں پوری طرح سے پرواسیوں کے پرویش پر پربندھ لگایا جائے۔ یوروپی سنگھ کی نیتیوں سے میلونی پوری طرح سے سنتوشت نہیں ہیں۔ یوروپی سنگھ کو اٹلی میں شرنارتھی سمسیا کا وہ مکھ کارن مانتی ہیں۔ ان کے ستا میں آنے سے یوروپی سنگھ میں یہ بھی بھے پایا جاتا ہے کہ کہیں وہ اس سنگھ سے الگ نہ ہو جائیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یورپ پلائن کرنے کے لیے اٹلی ایک پرمکھ مارگ ہے۔ اس ورش کے آرمبھ سے 70,000 پلائن کرتا پانی کے جہازوں سے اٹلی کی جل سیما تک پہنچے ہیں۔ ترکی کے راشٹرپتی کا کہنا ہے کہ یدھک ویمان F-16 کے بارے میں ان کے پاس کئی وکلپ موجود ہیں۔ امریکہ دوارا ترکی کو یدھک ویمان F-16 دیے جانے کے بارے میں پھر سے آنا کانی کے بیچ رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ اس سمبندھ میں ان کے پاس کئی وکلپ ہیں۔ ترکی نے F-16 یدھک ویمانوں کے آدھونکی کرن کے لیے امریکہ سے مہینوں پہلے اس ویمان کے کل پرزوں کی مانگ کی تھی۔ اس بارے میں امریکہ نے ترکی کو کوئی صاف جواب نہیں دیا تھا، بلکہ وہ اس سندرب میں آنا کانی سے کام لے رہا ہے۔ اب انہوں نے اس کام کو کانگریس کی انومتی سے جوڑ دیا ہے۔ اس معاملے نے ترکی کے راشٹرپتی کو پرتکریا دینے کے لیے وش کر دیا۔ رجب طیب اردوغان نے اس بارے میں کہا کہ ایسے میں ہمارے پاس کیول واشنگٹن نہیں ہے بلکہ دوسرے وکلپ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سمبندھ میں ہم کسی دوسرے سے بھی وارتا کر سکتے ہیں۔ فلسطین کے اسلامی پرتیرودھ آندولن حماس نے ایک بیان جاری کر کے عرب دیشوں دوارا اسرائیل کے ساتھ سمبندھوں کو سامانیہ بنانے کی پرکریا کی کڑی آلوچنا کی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس پرکریا کو روکا جانا چاہیے۔ فلسطینیوں نے چار مسلم دیشوں دوارا زائونی شاسن کو مانیتا پردان کرنے کی کڑی آلوچنا کی اور اسے پیٹھ میں چھرا گھوپنے جیسا کام بتایا۔ حماس کا کہنا ہے کہ عرب اور مسلم دیشوں کو زائونی شاسن کے ساتھ سمبندھ سامانیہ بنانے کے بجائے فلسطینیوں کے دمن اور ان کے ادھیکاروں کے ہنن کو روکنے کے لیے اس اویش شاسن پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ اسی پرکار حماس نے عرب سنگھ کی سنسد دوارا نابلس کی گھیرا بندی کو سماپت کیے جانے کے لیے وشو سمودائے سے ہستکشیپ کرنے کی اپیل کی سراہنا کی۔ فلسطین کے اسلامی پرتیرودھ آندولن حماس اور دمشق سرکار کے بیچ ایک بار پھر صلح ہو گئی ہے۔ غزہ پٹی کی سطح سنبھالنے والے فلسطینی پرتیرودھی سنگٹھن کبھی نکٹ سہیوگی ہوا کرتے تھے سیریا کا، اور سیریا کی راجدھانی دمشق میں حماس کا مکھیالے تھا۔ اسی بیچ لبنان کے اسلامی عمل فرنٹ نے ایک بیان جاری کر کے حماس کے نیتاؤں کی دمشق یاترا اور راشٹرپتی اسد سے ملاقات کی سراہنا کی ہے۔ عرب سمبندھوں کے حماس کے پرمکھ کے نیتتو میں حماس کے پرتنیدھی منڈل کی دمشق کی یاترا کو شیتری گھٹنا کرموں کے لیے بہت ہی مہتوپورن مانا جا رہا ہے۔ इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहती का सलाम स्वीकार कीजिए। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने गुरुवार को एक साक्षात्कार के दौरान स्वीकार किया कि हम बहुध्रुवीय व्यवस्था की दुनिया में रहते हैं और अब अमेरिकी एकाधिकार का समय समाप्त हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब यूरोप दुनिया के बारे में फैसला लेने वाला नहीं है, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से उसे डर लगने लगा है। ज़ायोनिस्ट शासन के युद्धक विमानों ने सीरिया की वायु सीमा का फिर उल्लंघन किया है। सीरियाई सेना ने बताया है कि दुश्मन के विमानों ने तबरिया झील के ऊपर से, जो पूर्वोत्तरी इलाके में स्थित है, राजधानी दमिश्क के करीब एक इलाके पर रॉकेट फायर किए। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात अब काफी बेहतर हो रहे हैं और आतंकवाद और अलगाववाद अंतिम सांसें व हिचकियां ले रहा है।
यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने गुरुवार को एक साक्षात्कार के दौरान स्वीकार किया कि हम बहुध्रुवीय व्यवस्था की दुनिया में रहते हैं और अब अमेरिकी एकाधिकार का समय समाप्त हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब यूरोप दुनिया के बारे में फैसला लेने वाला नहीं है, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से उसे डर लगने लगा है। समीक्षा पेश करें साथ ही सैयद मीसम अब्बास।
यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने गुरुवार को एक साक्षात्कार के दौरान स्वीकार किया कि हम एक बहुध्रुवीय दुनिया में रहते हैं और अब अमेरिकी एकाधिकार का समय समाप्त हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अब यूरोप दुनिया के बारे में फैसले करने वाला नहीं रहा है, बल्कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से उसे डर लगने लगा है। बोरेल का कहना था कि यूरोपीय संघ एक सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि आर्थिक और तकनीकी क्षमताओं का एक समूह है। एक वरिष्ठ पश्चिमी अधिकारी यानी यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख ने ये सच्चाई अभूतपूर्व ढंग से स्वीकार की है कि अब दुनिया में अमेरिका और उसके सहयोगियों का एकाधिकार समाप्त हो गया है और इसकी जगह एक बहुध्रुवीय दुनिया ने ले ली है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी इस सच्चाई को झुठलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उतनी ही ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है जितना वो इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इसे दुनिया में अमेरिकी विरोधी भावनाओं के बढ़ने के रूप में भी देखा जा रहा है। बोरेल के मुताबिक मैं लैटिन अमेरिका में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं और अफ्रीका में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं को समझता हूँ। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि यूरोपीय संघ अब वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली शक्ति नहीं है, बल्कि एक आर्थिक ब्लॉक और प्रौद्योगिकी के रूप में अब उसकी पहचान है। बहुध्रुवीय प्रणाली के गठन के ढांचे में चीन और रूस जैसी नई विश्व शक्तियों की भूमिका और इन दोनों देशों के प्रभावों के साथ साथ उभरती आर्थिक शक्तियों जैसे भारत और ब्राजील और कुछ अन्य देशों का नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा ईरान जैसे अभिमानी देश राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना प्रभाव छोड़ने वाले देशों में शामिल हैं। अमेरिका द्वारा एक ध्रुवीय प्रणाली को बनाए रखने के प्रयासों के विरोध में रूस और चीन की स्पष्ट स्थिति ने वाशिंगटन को परेशानी में डाल दिया है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन अमरीकी एकाधिकार को मजबूत बनाने और विश्व व्यवस्था पर अमरीकी पकड़ को बनाए रखने के लिए पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विनाशकारी कार्यों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हालांकि बाइडन का मानना है कि वे अपने राष्ट्रपति काल के दौरान एक बार फिर अमरीका की वैश्विक भूमिका को बहाल कर सकते हैं। नई शक्तियों जैसे चीन, भारत, रूस और अन्य उभरती आर्थिक शक्तियों के साथ साथ ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे संगठनों और समूहों के गठन से पश्चिम से पूर्व में सत्ता के स्थानांतरण का संकेत मिलता है। अमरीका के दावों और वैश्विक आधिपत्य जारी रखने पर अड़े रहने के बावजूद दुनिया आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और सुरक्षा के क्षेत्रों में वाशिंगटन की इच्छा की विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
जानी शासन के युद्धक विमानों ने सीरिया की वायु सीमा का फिर उल्लंघन किया है। सीरियाई सेना ने बताया है कि दुश्मन के विमानों ने तबरिया झील के ऊपर से, जो पूर्वोत्तरी इलाके में स्थित है, राजधानी दमिश्क के करीब एक इलाके पर रॉकेट फायर किए। रिपोर्ट पेश करें साथ ही अहमद अब्बास।
जानी शासन के युद्धक विमानों ने सीरिया की वायु सीमा का फिर उल्लंघन किया। सीरियाई सेना ने बताया कि दुश्मन के विमानों ने तबरिया झील के ऊपर से, जो पूर्वोत्तरी इलाके में स्थित है, राजधानी दमिश्क के करीब एक इलाके पर कई रॉकेट रात के समय फायर कर दिए। सीरियाई अधिकारी ने बताया कि देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकतर रॉकेटों को इंटरसेप्ट करके ध्वस्त कर दिया। बताया जाता है कि मिसाइल के टुकड़े कुछ दुकानों और रहायशी मकानों पर गिरे। 35 दिन तक हमले रुके हुए थे, जो फिर शुरू हो गए हैं। हाल ही में सीरियाई सरकार और हमास के बीच एक दशक की दूरी के बाद दोबारा संबंध बहाल हो गए हैं, जिसे बड़ी घटना माना जाता है। सीरियाई अधिकारी का कहना था कि इन हमलों का प्रत्यक्ष रूप से तो हमास की दमिश्क वापसी से संबंध नजर नहीं आता, मगर इस दौरे के असर का इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसराइल इस कोशिश में है कि सीरिया से रेजिस्टेंस संगठनों को हथियार हासिल न होने पाए। ये हमले सीरिया के लोगों के लिए महत्वहीन हो चुके हैं। सीरियाई नागरिक का कहना है कि दुश्मन इन हमलों से जनता को रेजिस्टेंस ग्रुप से अलग करना चाहता है, मगर ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। पर्यवेक्षक कहते हैं कि रेजिस्टेंस फ्रंट में शामिल संगठनों की बढ़ती ताकत और इसराइली कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीनियों का मजबूत होता हुआ प्रतिरोध वो परिवर्तन है जिनके चलते इसराइल बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इसराइल को इस समय केवल अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व के बचे रहने या ढह जाने को लेकर गहरी चिंता है। इसराइल कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हालात का रुख बदल जाए और वो समीकरण बदल जाए जो इस पूरे इलाके में स्थापित हो चुके हैं और जो किसी भी तरह से न इसराइल के हित में है और न ही अमेरिका के अन्य घटकों के हित में है। बहरहाल इसराइल की कोशिशें और आरजू एक अलग चीज है और जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग चीज है। जमीनी सच्चाई वो है जो इसराइल के हित में हरगिज नहीं है, बल्कि लगातार होने वाले परिवर्तन इसराइल को कठिनाइयों में डालते चले जा रहे हैं। दमिश्क से IRIB के लिए एसाम हिलाली की रिपोर्ट।
श्रोताओ अब रुक करते हैं भारत का। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात अब काफी बेहतर हो रहे हैं और आतंकवाद और अलगाववाद अंतिम सांसें व हिचकियां ले रहा है।
जम्मू कश्मीर यू ठीक है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब स्थिति में काफी सुधार आया है और यहाँ उनके अनुसार अलगाववाद और आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है। एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की मौजूदा सरकार ने कश्मीर के हवाले से गंभीरता के साथ जो कार्य किया है उसके अच्छे परिणाम निकले हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर निकल पड़ा है और यहाँ पर तमीर तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान करोड़ों रुपया लोगों पर खर्च किए गए और उसका लाभ भी आम नागरिकों को हासिल हुआ। उन्होंने बहुत से स्कीमों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने आम लोगों तक तमाम तर फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया और लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब शांति हर तरफ दिख रही है। उन्होंने कहा कि अब अलगाववादियों की ओर से बंद की कोई कॉल भी सामने नहीं आ रही है, जबकि आतंकवाद का सख्ती के साथ मुकाबला किया जा रहा है और मेरा ये मानना है कि अब यहाँ पर अलगाववाद और आतंकवाद आखिरी हिचकियां ले रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने धार्मिक नेताओं पर बल दिया कि वो लोगों को शांति के ओर ले जाने में अपना रोल अदा करें। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
इतिहासों का हिसाब जरूर होगा साथियों। हमारा मुल्क विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक समाज, सभी वर्ग के लोगों को समृद्ध जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराए जाने की कोशिश हो रही। ऐसे अनैतिक तत्व जो आम नागरिकों की आकांक्षाओं का गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ हमारे सुरक्षा बल पुलिस के जवान दिन रात जुटे हुए, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि पूरे समाज को भी एकता की भावना के साथ खड़ा होने की आवश्यकता। अगर हमारे समाज में कोई आतंकवाद अलगाववाद के जहर को बोने की कोशिश कर रहा तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हमें अपनी सतर्कता बढ़ानी होगी, ऐसे तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा। पिछले दिनों हुई घटनाओं के पश्चात जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की आवाम, यहाँ के प्रबुद्ध लोग सड़क पर आकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उससे मुझे भरोसा हो रहा है कि आतंकवाद की सांसें चंद दिन बची हुई। पूरी ताकत के साथ सुरक्षा बलों के जवान, हमारे ऑफिसर कोशिश कर रहे हैं और आज ये दिन है कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि आतंकवाद की ताबूत में आखिरी कील ठोकना ही अपने वीर शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम भी जारी है। बताया जाता है कि उत्तरी कश्मीर में अलगाववादी छापामारों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ में एक छापामार के हताहत होने की सूचना है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार ये दावा कर रही है कि यहां पर अलगाववाद और आतंकवाद समाप्त हो गया है, तो दूसरी तरफ हिंसक घटनाओं का क्रम भी समाप्त नहीं हो रहा है। मेन स्ट्रीम गुटों के गठबंधन गुपकार अलायंस ने आरोप लगाया है कि जब से जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया है, तब से यहां पर स्थिति में सुधार के बजाय यहां पर स्थिति इंतहाई खराब हो गई है। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आपने दैनिक कार्यक्रम सुना राजनैतिक चर्चा, और अब पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य।
उज्ज्वल भविष्य।
दोस्तों, कार्यक्रम उज्जवल भविष्य की एक अन्य कड़ी को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद इमाम खुमैनी और आयतुल्लाह खामेनेई के नेतृत्व में ईरान और विश्व में इस्लामी संस्कृति और अध्यात्म के विस्तार की चर्चा करेंगे।
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने इस्लामी क्रांति के बाद ईरानी समाज में होने वाले महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तनों का उल्लेख किया था। इस्लामी क्रांति की उपलब्धियों में से एक उपलब्धि शहादत की संस्कृति का विस्तार है। इस संस्कृति के कारण ईरानी लोगों ने सम्मानजनक जीवन जिया है। इमाम खुमैनी का कहना था कि शहादत की लाल रेखा आले मोहम्मद और हजरत अली की रेखा है। ये गौरव पैगंबर इस्लाम के परिवार और उनके पवित्र परिजनों से विरासत में मिला है। शहीद एक ऐसा चिराग होता है जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलता है। उस्ताद मुतहरी इस संदर्भ में कहते हैं, शहीद चिराग की भांति होता है जिसका काम जलना और फना हो जाना है ताकि दूसरों को रोशनी और प्रकाश प्रदान कर सके। जी हाँ, शहीद मानवीय समाज का चिराग होता है। वे खुद जल गए लेकिन उन्होंने इस समाज को रोशन कर दिया।
इस्लामिक क्रांति की व्यक्तिगत धार्मिकता और एकांत को सामूहिक धार्मिकता और बड़े धार्मिक समुदायों में बदल दिया। इस्लामिक क्रांति की बदौलत हजारों मस्जिदों और चर्चों को पुनर्जीवित किया गया। इस्लामिक क्रांति ने कम्युनिस्ट देशों में भी धर्म को पुनर्जीवित किया। एक समय था जब ईरान में विश्वविद्यालयों में नमाज पढ़ने से और हिजाब करने से लोग झिझकते थे, लेकिन आज विश्वविद्यालयों की मस्जिदें सबसे ज्यादा भरी हुई हैं। ऐसी परिस्थितियों में कि जब पश्चिमी देशों के युवाओं में अनैतिकता और अश्लीलता का प्रचार किया जा रहा है, इस्लामिक क्रांति विश्व में नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार का केंद्र बनी हुई है। इस्लामिक क्रांति समाज में न्याय और आशा की प्रतिमूर्ति बन गई है।
इस्लामिक क्रांति के अद्भुत और इंसानों की परवरिश करने वाले सिद्धांतों ने न केवल ईरान को प्रभावित किया बल्कि विश्वभर के विद्वानों और विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसी तरह से पवित्र दिलों को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर किया। इस्लामिक क्रांति ने भ्रष्टाचार, विनाश और अश्लीलता के अड्डों को उखाड़ फेंका और लोगों के लिए मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिकता की ओर पलटने का मार्ग प्रशस्त किया। ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनाई कहते हैं, इस्लामी क्रांति इस्लाम की क्रांति और कुरान की क्रांति है। इस क्रांति ने इस्लाम का परचम लहराया। इस क्रांति का गौरव यह है कि इसने इस्लामी मूल्यों, एक ईश्वरवाद, ईश्वरीय आदेशों, इस्लाम के आध्यात्मिक मूल्यों को दुनिया तक पहुँचाया।
शांति व्यवस्था और सुरक्षा सभी सरकारों की सबसे प्रमुख चिंताओं में से एक चिंता और सामाजिक जीवन की एक बुनियादी जरूरत होती है। यहां तक कि किसी भी देश की शक्ति का आंकलन इस बात से किया जाता है कि उसके नागरिक किस हद तक सुरक्षित हैं। इस्लामिक क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक ईरानी राष्ट्र के हितों की रक्षा और नागरिकों के लिए शांति और सुरक्षा की स्थापना है। कार्यक्रम के इस भाग में हम देश में शांति और सुरक्षा के कुछ आयामों की चर्चा करेंगे।
दोस्तों, सुरक्षा के भिन्न आयामों में से एक महत्वपूर्ण आयाम राजनीतिक सुरक्षा है। राजनीतिक सुरक्षा का संबंध देशों की संगठनात्मक स्थिरता, सरकारी प्रणालियों और उन विचारधाराओं से है जो सरकारों और राज्यों को वैध बनाती हैं। इस्लामी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी राजनीतिक लोकप्रियता है। इस्लामी व्यवस्था प्रणाली की स्थिरता का कारण यह है। इस्लामी क्रांति की सफलता के मुख्य कारणों में से एक क्रांति से पहले राजशाही शासन का कमजोर होना, विदेशी सरकारों पर निर्भर होना था, लेकिन इसके विपरीत इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था ने स्वतंत्र और स्वाधीन नीति अपनाई और आम लोगों को अपनी ताकत बनाया। पिछले चार दशकों के दौरान पश्चिमी ताकतों से जुड़े कुछ विरोधी गुटों द्वारा ईरानी जनता के खिलाफ की गई साजिशों और आतंकी कार्रवाइयों के बावजूद ईरान में एक दिन भी इमरजेंसी का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि देश में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए भरपूर प्रयास किए गए। देश में शांति व्यवस्था की स्थापना में ईरान ने इतनी अधिक सफलता हासिल कर ली कि इराक के साथ 8 वर्षों तक चली जंग के दौरान भी चुनावों के आयोजन में एक दिन की भी देरी नहीं होने दी।
ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता राजशाही व्यवस्था की समाप्ति और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना थी। समस्त साजिशों के बावजूद ईरानी जनता ने हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर इस्लामी क्रांति का समर्थन किया और उसकी बुनियादों को मजबूत किया। इस्लामी क्रांति की सफलता के पहले 3 वर्षों के दौरान किसी एक शासन के पतन के लिए जो भी कार्यवाही काफी होती है वह इस्लामी गणतंत्र के खिलाफ की गई, जैसे कि देश में अलगाववादी गुटों को विश्व की 2 महाशक्तियों द्वारा समर्थन दिया गया, प्रतिबंध लगाए गए और वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों की हत्याएं करके तख्ता पलट करने के प्रयास किए गए। 1981 में सिर्फ 2 महीनों के दौरान ईरान के न्यायपालिक प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कई मंत्रियों को मुजाहिदीन खल्क नामक आतंकवादी गुट द्वारा शहीद कर दिया गया। इस आतंकवादी गुट के हाथों 17,000 आम लोग भी मारे गए।
इस्लामी गणतंत्र ईरान को उखाड़ फेंकने के लिए सबसे खतरनाक कदम क्रांति की सफलता के 19 महीने बाद उठाया गया। इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम ने सितंबर 1980 में ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यह जंग ऐसी परिस्थितियों में ईरान पर थोपी गई कि जब इस्लामी क्रांति अपनी जड़ों को मजबूत भी नहीं कर सकी थी। इन परिस्थितियों में ईरान किसी भी तरह के सैन्य हमले के लिए तैयार नहीं था, विशेषकर 1200 किलोमीटर लंबी संयुक्त सीमा पर। इसके बावजूद ईरानी जनता ने मोर्चे पर अपनी कुर्बानियों से सद्दाम की सेना के दांत खट्टे कर दिए, जिसे दुनिया की 2 महाशक्तियों के अलावा लगभग पूरी दुनिया का समर्थन हासिल था। शहीदों के खून ने ईरान की नई क्रांति को मजबूती प्रदान की। वहीं जनता ने जन संग्रह समेत हर चुनाव में अपनी महान भागीदारी से दुश्मनों को निराश कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर जनता का समर्थन ना होता तो इस्लामी गणतंत्र की उम्र 44 साल भी नहीं हो पाती।
समस्त घटनाक्रमों और परिवर्तनों के बावजूद पिछले 4 दशकों के दौरान ईरानी जनता ने जिस शांति और सुरक्षा का स्वाद चखा है, क्रांति से पहले उसका नामो निशान तक नहीं था। क्रांति से पहले शाही हुकूमत के दौरान लोगों की जान और उनके माल को हमेशा खतरा रहता था। ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि तेहरान में पुलिस अधिकारियों की देखरेख में तस्करी अपने चरम पर है। रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों से बड़े पैमाने पर वसूली की जाती है और लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। यहां तक कि लोगों में शिकायत तक करने का साहस नहीं है। इमाम खुमैनी क्रांति से पहले के पुलिस थानों का जिक्र करते हुए कहते हैं, उस वक्त जब भी कोई किसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करना चाहता था तो डरता था कि कहीं पुलिस उल्टा उसे ही नहीं फंसा दे। लोग पुलिस से ऐसे डरते थे जैसे मोहल्ले के चोरों और डकैतों से डरते हैं।
दोस्तों, आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई क्रांति से पहले ही इमाम खुमैनी के साथियों और संघर्षकर्ताओं में से थे। शाही दौर में शांति और सुरक्षा की स्थिति के बारे में वो कहते हैं, शाही दौर में मुझे सीमावर्ती इलाकों में काले पानी की सजा दी गई। उन इलाकों का कंट्रोल गुंडों और डकैतों के हाथ में हुआ करता था। सुरक्षा का अर्थ था सिर्फ अमीर और पूंजीपति लोग ही सुरक्षित थे, दूसरों को ऐसा कोई अधिकार हासिल नहीं था। इसीलिए अगर दूर दराज इलाकों में कोई अपने नौकर को कैद कर दिया करता था या उसकी जान ले लिया करता था तो मानो कोई बात ही नहीं हुई हो। अगर लोग पुलिस चौकियों में जाकर शिकायत भी करते थे तो शिकायत करने वाला ही फंस जाता था। इसीलिए कहा जा सकता है कि विशेष वर्ग को सुरक्षा हासिल थी, न कि सामान्य लोगों को। आज ईरान में सभी सुरक्षित हैं, सिर्फ उन लोगों के अलावा जो दूसरों की और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। हर देश के लिए हर स्तर पर सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। ईरान आज दुनिया के सबसे असुरक्षित इलाकों में स्थित है, लेकिन दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है।
तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम था उज्जवल भविष्य और अब पेश है सभा का अंतिम कार्यक्रम ईरान भ्रमण।
ईरान भ्रमण।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम में तेहरान प्रांत और उसके उपनगर शेमिरानात के बारे में चर्चा करेंगे।
श्रोताओ, तेहरान प्रांत मध्य ईरान के उत्तर में अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी स्लोप और मरुस्थल के पश्चिम में स्थित है। इस प्रांत का केंद्र तेहरान शहर है, जो ईरान की राजधानी भी है। तेहरान प्रांत में कई नगर स्थित हैं। इसका क्षेत्रफल 12,981 वर्ग किलोमीटर है। तेहरान प्रांत के उत्तर में माजंदरान प्रांत, दक्षिण में कुम प्रांत, दक्षिण पश्चिम में मरकजी प्रांत, पश्चिम में अलबुर्ज प्रांत और पूरब में सेमनान प्रांत स्थित हैं। तेहरान प्रांत की जमीन समतल नहीं बल्कि ऊंची नीची है।
इस हिसाब से यहाँ की जमीन को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक हिस्सा तेहरान शहर के उत्तर में अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों का, दूसरा हिस्सा केंद्रीय एवं अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी स्लोप का और तीसरा हिस्सा तेहरान प्रांत के मैदानी भाग का है। प्रकृति, भूगोल व पर्यावरण विज्ञान की नज़र से तेहरान प्रांत अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के माध्यम से ईरान के उत्तरी प्रांतों से अलग हुआ है।
तेहरान प्रांत के महत्वपूर्ण शहरों के नाम इस प्रकार हैं: शहरियार, इस्लाम शहर, रे, पाकदश्त, दमावंद, शमीरानात, वरामीन और फिरूजकुह। आपको बताते चलें कि तेहरान प्रांत के विभिन्न उपनगरीय इलाकों की जलवायु अलग अलग प्रकार की है। इसका कारण इस प्रांत का विशेष भौगोलिक स्थिति का स्वामी होना है। तेहरान प्रांत की जलवायु में इस प्रांत के दक्षिणी भाग में मरुस्थल, उत्तरी भाग में अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के पहाड़ और पश्चिमी भाग की आर्द्र व बारिश लाने वाली हवाओं का बहुत बड़ा रोल है।
इसी प्रकार तेहरान प्रांत की जलवायु में यहाँ के चारों ओर मौजूद पहाड़ियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। यही कारण है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तापमान बढ़ता जाता है, साथ ही बारिश का स्तर भी कम होता जाता है। जबकि तेहरान प्रांत के उत्तरी भाग में जाड़े के मौसम में पहाड़ों के ढलाऊ हिस्सों और अलबुर्ज की दक्षिणी घाटियों पर बर्फ रहती है। इसी बर्फ के ऊपर स्कीइंग जैसे शीत ऋतु के खेलों के लिए उचित पृष्ठभूमि उपलब्ध हो जाती है। तेहरान प्रांत के कुछ उपनगरों में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, इसलिए इन उपनगरों में प्रकृति की सैर के लिए निकला जा सकता है।
श्रोताओं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि तेहरान प्रांत में कई नगर हैं, जिनमें से एक शेमिरानात या शेमिरान है। ये अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के आंचल में स्थित है। शेमिरानात के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वे हैं लवासानात, रूदबार, कसरान और तजरीश आदि। अपनी यात्रा के दौरान आज हम शिमिरान पहुंचे हैं। ये तेहरान के पूर्वोत्तर में पहाड़ी अंचल में स्थित है। तेहरान की बढ़ती हुई आबादी के कारण अब ये क्षेत्र तेहरान से पूरी तरह जुड़ चुका है। प्राचीन काल में तजरीश को तजरुश्त के नाम से जाना जाता था।
इतिहास की पुस्तकों में इस क्षेत्र को बहुत ही अच्छी जलवायु वाला हिस्सा बताया गया है। यहाँ पर बनी हुई इमारतें प्राचीन काल की वास्तुकला शैली पर आधारित हैं। यहाँ पर पतली पतली तंग गलियां हैं। आज इतने विकास और विस्तार के बावजूद शमीरान के कुछ क्षेत्रों में आपको प्राचीन शैली के बने हुए घर दिखाई देंगे। काजार शासन काल में तेहरान के राजधानी नियुक्त किए जाने के बाद से शमीरान क्षेत्र गर्मियों में समय बिताने के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र में परिवर्तित हो गया था।
उस काल में तेहरान के धनवान लोग गर्मियों का मौसम बिताने के लिए यहाँ पर आया करते थे। उनमें से कुछ ने यहाँ पर रहने के लिए घर बनवा लिए। इस प्रकार शमीरान का विस्तार होता गया और वो तजरीश से मिल गया। आज के दौर में यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा हिस्सा तजरीश का है और कौन सा हिस्सा शमीरान का है। तजरीश में कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद धार्मिक स्थलों में से एक इमामजादे सालेह का मकबरा है। ये मकबरा तजरीश स्क्वायर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये तेहरान की बहुत ही प्राचीन ज़ियारतगाह है।
दोस्तों, इमामजादे सालेह के मकबरे पर लगे शिलालेख पर जो तारीख अंकित है उससे पता चलता है कि इसको सन 700 हिजरी कमरी में बनाया गया था। बाद में इसके इर्द गिर्द इमारतें बनती चली गईं और यहाँ की आबादी बहुत घनी हो गई। बाद में इसके उत्तरी हिस्से में एक हमाम या स्नान गृह का निर्माण करवाया गया। इमामजादे की इमारत वर्गाकार है जिसकी दीवारें बहुत ही मजबूत हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनका कहना है कि यहाँ पर आकर आत्मा को शांति मिलती है। तेहरान के बहुत से लोगों को इससे बहुत लगाव है।
दोस्तों, शहरी समाज में अतीत से लेकर आज तक बाजारों के विभिन्न महत्व रहे हैं। बाजार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आर्थिक है, उसे लेन देन का केंद्र समझा जाता है। इसी तरह बाजार विभिन्न वस्तुओं के आयात निर्यात में संतुलन और चीजों के मूल्य निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसी तरह बाजार वो स्थान है जहां देश के नए नए उत्पादों को पेश किया जाता है। इस प्रकार से इन उत्पादों को विभिन्न देशों में निर्यात करने की संभावना बढ़ जाती है। बाजार में क्रय विक्रय की प्रक्रिया का सरकार की आर्थिक नीति पर प्रभाव पड़ता है। यही प्रक्रिया सरकार की आर्थिक नीति से प्रभावित भी होती है। इसी तरह बाजार वो जगह है जहाँ से आर्थिक मंदी या उछाल का पता चलता है।
इमामजादे सालेह का जो मकबरा है उसके पास ही एक प्राचीन पारंपरिक बाजार है। ये ऐसा बाजार है जो लगभग एक शताब्दी पुराना है। ये बाजार बहुत लंबा है जिसमें दोनों ओर दुकानें बनी हुई हैं। इसमें कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनकी आयु 220 वर्ष पुरानी है। ये एक ऐसा बाजार है जिसमें भांति भांति की वस्तुएं पाई जाती हैं। इस बाजार की एक विशेषता यह है कि यहाँ पर दैनिक आवश्यकता की सारी चीजें बहुत ही सरलता से मिल जाती हैं। तजरीश के बाजार में बहुत रौनक रहती है। यहाँ पर एक केवल दिन में बल्कि रात में भी बहुत रौनक होती है। जब सूरज डूब जाता है और रात होने लगती है तो इस बाजार में आने वालों की संख्या बढ़ने लगती है। तजरीश के बाजार में खाने के कुछ ऐसे व्यंजन मिलते हैं जो किसी दूसरे स्थान पर बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं।
दोस्तों, कार्यक्रम के इस भाग में हम कुछ राजधानी तेहरान के इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं। तेहरान में इंसानों के बसने का इतिहास 5000 साल ईसा पूर्व से मिलता है। सन 1393 हिजरी शमसी के 10वें महीने में तेहरान के मौलवी नामक इलाके में एक नरकंकाल बरामद हुआ जिसके बारे में बताया जाता है कि वो 5000 साल ईसा पूर्व का है। इससे पहले तक यहाँ अनुमान लगाया जाता था कि तेहरान में इंसानों के बसने का इतिहास कैतरिये में हुई खुदाई में मिले अवशेष से जुड़ा है, जो लगभग 3000 साल ईसा पूर्व है। कैतरिये में की गई खुदाई से पहले तक ये विचार आम था कि तेहरान का इतिहास अश्कानी शासन काल जितना पुराना है, अर्थात ये 2000 साल ईसा पूर्व का है। उस समय तेहरान एक गांव था जो रय नगर के उत्तर में स्थित था। उन दिनों रय न केवल ईरान का बल्कि मध्य पूर्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। दारियुश ने बिस्तून के शिलालेख में रय शहर के नाम का जिक्र किया है। सासानी शासनकाल में रय बहुत मशहूर हुआ। आज भी इस शासनकाल के अनेक अवशेष रय के आसपास मौजूद हैं। चौथी हिजरी कमरी तक रय की गणना बड़े शहरों में हुआ करती थी, किंतु 617 हिजरी कमरी में मंगोलों के हमले में ये लगभग उजड़ गया था।
यहाँ पर इस बिंदु का उल्लेख जरूरी है कि उस समय तेहरान एक ऐसा बड़ा गांव था जहाँ पर बहुत हरियाली थी और वो पेड़ों से भरा हुआ था। यहाँ की जलवायु इतनी अच्छी थी कि गर्मी के मौसम में लोग तेहरान आ जाते थे। उस समय के लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में तहखाने बनाते थे। जब कोई दुश्मन हमला कर देता था तो वे उसमें जाकर पनाह लेते थे। उस काल के लोग तहखानों में खाद्य पदार्थ का इतना बड़ा भंडार करते थे कि अगर महीनों दुश्मन के साथ सामना करना पड़े तो वे सरलता से प्रतिरोध कर सकें। यही कारण है कि तेहरान मंगोलों के हमलों में सुरक्षित रहा और रे शहर के उजड़ने के बाद इसकी अहमियत बढ़ गई। इसी के साथ दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारा आज का प्रयास आपको कैसा लगा इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल, क्षमा कीजिएगा, हमारा ईमेल है hindi@wsirib.ir। हमारी वेबसाइट है partstoday.com/hi। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहाँ पर समाप्त होने जा रही है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज़।